नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन ना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ई एफ शुमाकर की स्मॉल इज ब्यूटीफुल पहली बार 1973 में प्रकाशित निबंधों का एक प्रभावशाली संग्रह है। यह अर्थशास्त्र, पर्यावरण और नैतिक दर्शन के संगम पर लिखी सामाजिक टिप्पणी है। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण है। क्या आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल उत्पादन, लाभ और उपभोग बढ़ाना है, या उसे मनुष्यों, समुदायों और प्रकृति की वास्तविक जरूरतों की सेवा करनी चाहिए? शुमाकर बड़े उद्योगों, केंद्रीकृत सत्ता और असीम आर्थिक वृद्धि को स्वाभाविक प्रगति मानने से इनकार करते हैं। वे ऐसी तकनीक, संगठन और विकास नीति का पक्ष लेते हैं जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मानवीय पैमाने की और संसाधनों के प्रति जिम्मेदार हो। ऊर्जा संकट और तेज वैश्वीकरण के दौर में लिखी गई यह पुस्तक आज जलवायु परिवर्तन, असमानता और स्थानीय आजीविका की बहसों में भी प्रासंगिक लगती है। इसका लक्ष्य कोई तैयार आर्थिक मॉडल देना नहीं, बल्कि प्रचलित आर्थिक मान्यताओं की नैतिक सीमाओं को स्पष्ट करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, अर्थशास्त्र को मानव कल्याण के अधीन रखने का प्रस्ताव। पुस्तक का शीर्षक ही शुमाकर की मूल कसौटी बताता है। अर्थशास्त्र ऐसा हो जिसमें लोग मायने रखें। उनका विरोध बाजार, व्यापार या उत्पादकता से नहीं है। उनकी आपत्ति उस दृष्टि से है जिसमें किसी गतिविधि का मूल्य केवल पैसे में मापे गए लाभ, लागत और उत्पादन से तय होता है। इस दृष्टि में परिवार, समुदाय, काम की गरिमा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन और भविष्य की पीढ़ियों पर प्रभाव अक्सर आर्थिक गणना के बाहर रह जाते हैं। शुमाकर के अनुसार, यदि कोई व्यवस्था वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते हुए लोगों को बेरोजगारी, निर्भरता, सामाजिक विघटन या पर्यावरणीय हानि की ओर धकेलती है, तो उसे सफल कहना अधूरा निष्कर्ष है। वे अर्थव्यवस्था को अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि अच्छे जीवन के लिए साधन मानते हैं। इसलिए पुस्तक समृद्धि की परिभाषा को व्यापक बनाती है। पर्याप्तता, संबंधों की गुणवत्ता, उपयोगी काम और जीवन की स्थिरता को भी आर्थिक विचार में स्थान मिलना चाहिए। यह तर्क आज सकल उत्पादन के साथ जीवन स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकेतकों को देखने की आवश्यकता से जुड़ता है। शुमाकर का योगदान यह है कि वे आर्थिक नीति को तकनीकी तटस्थता का विषय मानने के बजाय मूल्य आधारित सार्वजनिक चुनाव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, बौद्ध अर्थशास्त्र में पर्याप्तता, सार्थक श्रम और संयम। शुमाकर के सबसे चर्चित विचारों में बौद्ध अर्थशास्त्र का विचार शामिल है। इसके माध्यम से वे यह नहीं कहते कि हर समाज को किसी एक धार्मिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए। वे यह दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था के लक्ष्य मनुष्य और जीवन के बारे में हमारी धारणाओं से निकलते हैं। आधुनिक उपभोक्तावादी दृष्टि कम से कम श्रम में अधिकतम उपभोग चाहती है। इसके विपरीत, शुमाकर सार्थक काम को केवल आय अर्जित करने का साधन नहीं, मनुष्य की क्षमता, अनुशासन और सामाजिक भागीदारी का स्रोत मानते हैं। मशीन तब उपयोगी है जब वह कठिनाई घटाए और मनुष्य की रचनात्मक भूमिका बढ़ाए, लेकिन यदि वह बड़ी संख्या में लोगों को निष्क्रिय, बेकार या केवल उपभोगकर्ता बना दे, तो उसकी सामाजिक लागत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्याप्तता का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। जरूरत और लालसा में अंतर किए बिना अर्थव्यवस्था लगातार नई इच्छाएं पैदा करती रहती है। शुमाकर विलासिता को व्यक्तिगत अपराध नहीं कहते, लेकिन उस संस्कृति पर प्रश्न उठाते हैं जो सीमाहीन चाहत को प्रगति का इंजन मानती है। इसीलिए उनका समाधान केवल सरकारी नीति नहीं है, उसमें शिक्षा, व्यक्तिगत संयम और समाज की सामूहिक प्राथमिकताओं में बदलाव भी शामिल है। तीसरा, मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी से स्थानीय क्षमता और रोजगार। शुमाकर बड़ी और अत्यधिक पूंजी आधारित तकनीक के विकल्प के रूप में मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी की अवधारणा रखते हैं। इसका अर्थ पिछड़ी या अक्षम तकनीक नहीं है, इसका अर्थ ऐसी तकनीक है जो स्थानीय कौशल, उपलब्ध संसाधनों, पूंजी की सीमा और वास्तविक जरूरतों के अनुकूल हो। विकासशील देशों के संदर्भ में उनका तर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि गरीब देशों में केवल धनी औद्योगिक समाजों की विशाल फैक्ट्री, महंगी मशीन और विशेषज्ञ निर्भर व्यवस्था की नकल की जाए, तो उससे सीमित आधुनिक क्षेत्र तो बन सकता है, लेकिन व्यापक रोजगार और स्वावलंबन नहीं। ऐसी व्यवस्था आयातित उपकरण, विदेशी पूंजी और कुछ बड़े शहरों पर निर्भर हो सकती है। मध्यवर्ती तकनीक अपेक्षाकृत सस्ती, मरम्मत योग्य, श्रम को उपयोगी बनाने वाली और छोटे उद्यमों के लिए सुलभ होनी चाहिए। इससे उत्पादन का नियंत्रण लोगों और समुदायों के निकट रह सकता है। शुमाकर तकनीकी चयन को राजनीतिक और सामाजिक चयन भी मानते हैं, क्योंकि हर तकनीक काम के वितरण, कौशल की जरूरत और सत्ता के केंद्रीकरण को प्रभावित करती है। इस विचार की सीमा भी समझनी चाहिए। हर क्षेत्र छोटे पैमाने पर नहीं चल सकता, जैसे जटिल सार्वजनिक ढांचा या कुछ वैज्ञानिक सेवाएं। फिर भी पुस्तक पूछती है कि तकनीक का आकार किस समस्या के लिए उचित है और उसका लाभ किसके हाथ में जाता है। चौथा, प्रकृति को पूंजी मानने और ऊर्जा निर्भरता पर चेतावनी। संसाधनों पर शूमाकर का विचार पुस्तक को केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था की दलील से आगे ले जाता है। वे जीवाश्म ईंधन और अन्य अपुनर्नवीकरणीय संसाधनों को साधारण आय की तरह खर्च करने पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि प्रकृति से मिली ऐसी संपदा पूंजी जैसी है जिसे एक बार समाप्त करने पर आसानी से वापस नहीं पाया जा सकता। जब अर्थव्यवस्था तेज वृद्धि के लिए इस पूंजी को लगातार जलाती है, तब बाजार में दिखने वाली वर्तमान समृद्धि भविष्य पर बोझ डाल सकती है। यह दृष्टि उस समय विशेष अर्थ रखती थी जब ऊर्जा संकट ने औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की ईंधन निर्भरता को उजागर किया। शूमाकर भूमि के उपयोग पर भी संवेदनशीलता दिखाते हैं। खेती, जंगल, मिट्टी और जल को केवल उत्पादन की इकाइयों के रूप में देखने से उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य की उपेक्षा होती है। उनके लिए संरक्षण विकास विरोधी आग्रह नहीं, उत्पादन की स्थायी शर्त है। पुस्तक यह नहीं मानती कि सभी आर्थिक गतिविधियां रोक देनी चाहिए, बल्कि वह लागत की गणना को ईमानदार बनाने को कहती है ताकि प्रदूषण, संसाधन क्षय और पारिस्थितिक नुकसान को किसी अदृश्य बाहरी परिणाम की तरह न छोड़ा जाए। आज हरित अर्थव्यवस्था की चर्चाओं में यह प्रश्न अब भी केंद्रीय है, क्या स्वच्छ दिखने वाली वृद्धि वास्तव में सामग्री, ऊर्जा और भूमि की सीमाओं का सम्मान करती है। अंत में स्वामित्व, संगठन और बड़े संस्थानों की मानवीय सीमा, स्मॉल इज ब्यूटिफुल का छोटापन केवल दुकान, गांव या मशीन के आकार तक सीमित नहीं है। शूमाकर संगठन और स्वामित्व के प्रश्न पर भी विचार करते हैं। उनका मानना है कि जब संस्थाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, तब निर्णय लेने वाले और निर्णय से प्रभावित लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस दूरी से जवाबदेही कमजोर हो सकती है और स्थानीय ज्ञान की अनदेखी बढ़ सकती है। वे छोटे उद्यम, विकेंद्रीकृत निर्णय और समुदाय के निकट संस्थाओं के पक्ष में तर्क देते हैं, क्योंकि इनमें जिम्मेदारी और भागीदारी की संभावना अधिक रहती है। फिर भी उनका तर्क सरल रूप से हर बड़ी संस्था को समाप्त करने का नहीं है। कुछ कार्यों के लिए बड़े संगठन जरूरी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विशाल संस्थाओं के भीतर भी मानवीय पैमाने की इकाइयां, स्पष्ट दायित्व और स्थानीय स्वायत्तता कैसे बनी रहे। स्वामित्व के प्रश्न में भी पुस्तक उस व्यवस्था पर संदेह करती है जहां नियंत्रण और लाभ कुछ दूरस्थ हाथों में केंद्रित हो, जबकि सामाजिक और पर्यावरणीय लागत समुदाय उठाए। निष्पक्ष व्यापार, सहकारी प्रयास और छोटे उत्पादकों की बाजार तक पहुंच जैसी समकालीन बहसें इसी चिंता से जुड़ती हैं। शूमाकर का ढांचा याद दिलाता है कि दक्षता का अर्थ केवल कम लागत नहीं, बल्कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था भी है जिसमें लोग अपने काम और जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर वास्तविक प्रभाव रख सके। निष्कर्ष में, यह पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं, पर्यावरण संबंधी काम करने वालों, उद्यमियों और उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो विकास की प्रचलित भाषा पर गंभीरता से विचार करना चाहते हैं। स्थानीय उत्पादन, निष्पक्ष व्यापार, ग्रामीण आजीविका, टिकाऊ ऊर्जा या जिम्मेदार तकनीक में रुचि रखने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ किसी एक सूत्र में नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने की क्षमता में है। किसी परियोजना, तकनीक या नीति को देखते समय पाठक पूछ सकता है कि इससे किसे काम मिलता है, नियंत्रण किसके पास जाता है, स्थानीय संसाधनों पर क्या असर पड़ता है और क्या इसका लाभ लंबे समय तक टिकेगा। बौद्धिक रूप से पुस्तक लाभ और उत्पादन की संकीर्ण भाषा के बाहर नैतिकता, शिक्षा, काम और प्रकृति को आर्थिक विचार के केंद्र में लाती है। समान विषयों पर लिखी अनेक पर्यावरणवादी पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह पर्यावरणीय चिंता को संगठन के आकार, तकनीकी चुनाव और मानवीय गरिमा के प्रश्नों से जोड़ती है। यह केवल प्रदूषण घटाने का कार्यक्रम नहीं देती, बल्कि विकास की दिशा और उद्देश्य पर पुनर्विचार कराती है। पुस्तक 1973 के संदर्भ में लिखी गई थी, इसलिए इसके कुछ उदाहरण और वैचारिक विवाद आज पुराने लग सकते हैं। छोटे पैमाने के समाधान हर आधुनिक समस्या का उत्तर भी नहीं है, फिर भी इसकी स्थायी शक्ति इसी संतुलित चुनौती में है। बड़ा होने को स्वचालित रूप से बेहतर मानने से पहले उसके मानवीय और पारिस्थितिक परिणामों को परखना चाहिए। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं E.F. शूमाकर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।